हमारे जीवन में जो दुख आया है, इस दुख को देने वाली तुम्हारी सौतेली माँ नहीं है। तुम्हारी माँ, सौतेली माँ के बारे में अनिष्ट मत सोचना। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में जो दुख आया है, यह दुख हमारे अपने कर्मों का ही फल है। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में सब लोग अपने निज कर्म को ही भुगत रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दूसरों को दुखी कर सके। कभी कभी हमारे जीवन में जब दुख आता है तो हम कहते हैं, ये मुझे दुख दे रहा है, ये दुख दे रही है। दूसरों को दुख देने वाला कोई हो ही नहीं सकता। हमें जो दुख दे रहा है, हमारा अपना कर्म दुख दे रहा है। पिछले जन्म में कुछ बुरा कर्म किया होगा, इसलिए इस जीवन में हमारे जीवन में दुख है। परंतु जिसके द्वारा हमें दुख मिलता है, उसके बारे में हम अनिष्ट सोचते हैं, गाली देते हैं। वास्तव में दुख देने वाला तो बहुत बड़ा हमारा हितेशी है। संसार में जो व्यक्ति हमें दुख देता है, उसे धन्यवाद देना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए। क्योंकि बेचारा हमारे कर्मों को अपने सिर पर ढोकर हमारे पास ला रहा है। हमारे पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं, उनका फल बन चुका है। केवल ये संसार के लोग उस फल को लेकर हमारे पास आ रहे हैं। अब बेचारा वह तो फल को डिलीवरी कर रहा है, दे रहा है, और उसको हम शत्रु माने, दुख शत्रु माने, दुख देने वाले माने, तो ये ठीक नहीं है। हमारे अपने कर्म ही दुख बनकर प्रकट होते हैं, इसलिए दूसरों को दोष देने की जरूरत नहीं। बेटा, हमने पिछले जन्म में कुछ बुरा कर्म किया होगा, वही बुरे कर्म का फल आज हमारे ऊपर आया है। और बेटा, तुम तो भाग्यशाली हो क्योंकि राजा के पुत्र हो, परंतु इस दुर्भाग्यशालिनी माँ के घर पर तुम हो, इसलिए तुम दुखी हो। मेरे जीवन का दुर्भाग्य तो तुम देखो कि राजा मुझे पत्नी स्वीकारने के लिए तैयार तो नहीं है, मुझे दासी रखने के लिए भी तैयार नहीं है। दासी कहने में भी राजा शर्माते हैं। परंतु बेटा, फिर भी यदि तुम्हें उस राजा की गोद में बैठना है तो मेरे पास एक उपाय है। देखिए, एक माँ अपने पुत्र को क्या शिक्षा देती है। आतिष्ट तत्तात विमस्त रस्त्वम। तुम्हारी सौतेली माँ ने जो उपाय बताया है, बहुत सत्य उपाय बताया है। उन्होंने कहा है, आराधय अधोक्षज पाद पद्म अधोक्षज, भगवान विष्णु की आराधना करो, बिल्कुल सत्य है। यदि तुम भगवान विष्णु की आराधना करोगे तो तुम तुम्हारे पिता की गोद में बैठ सकते हो। भगवान विष्णु तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। तब ध्रुव रोते रोते अपनी माँ को पूछ रहा है। देखिए, संसार के इतिहास में ये पहली ऐसी घटना है, उपदेश देने वाला भी रो रहा है और उपदेश सुनने वाले ध्रुव भी रो रहे हैं। बहुत करुण दृश्य है। माँ इस संसार में भगवान विष्णु के पास आकर किसी ने इस प्रकार का राज्य प्राप्त किया है? तब सुनीति कहती, हाँ बेटा, भगवान के प्रथम पुत्र ब्रह्मा, उनके पास कुछ नहीं था, परंतु भगवान को तपस्या करके प्रसन्न किया, भगवान की कृपा से ब्रह्म पद प्राप्त हुआ, ब्रह्म लोक के राजा हो। ध्रुव कहते हैं, ये तो बहुत बड़े लोगों की बात है माँ, हमारे कुटुंब में कोई ऐसा है जिसको भगवान की प्राप्ति हुई और उसकी इच्छा पूरी हो गई हो? तो कहते, हाँ बेटा, तुम्हारे पिता उत्तानपाद और उनके पिताजी मनु महाराज, तुम्हारे मनु दादा, ध्रुव महाराज के दादा ही तो है। तुम्हारे मनु दादा गए थे भगवान के पास और उनकी तपस्या की है, और तपस्या करने पर भगवान ने उसे 71 चतुर्युग तक राजा बना दिया। एक दो दिन के लिए, दो पांच साल के लिए नहीं, 8 अरब और 64 करोड़ वर्ष 71 बार जब हो जाए, उतने वर्षों तक मनु महाराज राजा रहे। 71 चतुर्युग तक एक छत्र रानी। बेटा भगवान विष्णु की यदि प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण हो। अच्छा तो हे माँ, अब ये बताओ कि वो विष्णु कहाँ मिलेंगे? तो माँ सुनीति कहती है, बेटा मैं तो नहीं जानती हूं, परंतु मैंने सुना है कि बड़े बड़े लोग भगवान की प्राप्ति करने के लिए वन में जाते हैं, जंगल में जाते हैं। बस इतना सुनते ही ध्रुव महाराज अपनी माँ को प्रणाम करते हैं, माता जी तो मैं वन में जा रहा हूं। और माता ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया कि बेटा जाओ और भगवान की प्राप्ति कर लो। आज की माँ यदि होती तो अपने पुत्र को रोक दी होती, बेटा ये क्या कर रहे हो, हमने तो देखा है जंगल में जाने की बात तो रही, कुछ लोगों के लड़के केवल रविवार को मंदिर में आते हैं तो भी माता पिता रोकते हैं, ये मंदिर में जाने की उम्र है, ये तो पढ़ने लिखने की कमाने की उम्र है, जब बूढ़े हो जाओगे तब मंदिर में जाना। बूढ़ा व्यक्ति ठीक से पेशाब भी नहीं कर सकता है, लेटरिन भी नहीं जा सकता है, मंदिर क्या जाएगा? परंतु संसार में लोगों की धारणा है कि मंदिर में वे लोग जाते हैं जो बूढ़े हो चुके, संसार में किसी के काम के नहीं रहते हैं, तो भगवान कितना चाहिए। परंतु सिद्धांत यह है कि भक्ति बचपन से होनी चाहिए। सुनीति कह रही है कि बेटा जाओ। मन में प्रश्न होता है, क्या सुनीति क्या हृदय इतना कठोर था कि अपने 5 साल के कोमल बालक को वन में भेज दिया? और पहले के वन तो बहुत खूंखार होते थे, उसमें सिंह भालू शेर, क्या सुनीति को दया नहीं आई अपने 5 साल के बालक को वन में भेजने के लिए? परंतु सुनीति के मन में विचार आया, त्वमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम स रक्षति रक्षति यो ही गर्भे। जो भगवान गर्भ जैसी भीषण स्थिति में भी बालक की रक्षा करते हैं, वो भगवान को प्राप्त करने के लिए मेरा पुत्र जा रहा है, क्या भगवान उसकी रक्षा नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। और वह भगवान भक्त वत्सल है, भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। वत्सल का अर्थ होता है जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, वैसे ही भगवान अपने भक्त से प्रेम करते हैं। आपने तो देखा होगा जब गाय किसी बछड़े को जन्म देती है तो किसी भी व्यक्ति को उसे पास नहीं आने देती है, उस बछड़े की गंदगी को गाय अपनी जीभ से साफ करती है, और यदि हम उस बछड़े के पास चले भी जाए तो गाय लात मार देती है, किसी को आने नहीं देती है। ठीक उसी प्रकार भगवान अपने भक्त की, जैसे गाय बछड़े की रक्षा करती है, वैसे भगवान अपने भक्त की रक्षा करती है। सुनीति यह बात को जानती थी, अपने पुत्र ध्रुव को विदाई दी, और निश्चित जब सुनीति जैसी माँ इस संसार में होगी तब ध्रुव जैसे पुत्र इस संसार में प्रकट होंगे। 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तब जब माँ का आशीर्वाद। ध्रुव निकले हैं घर से, एवं संजल पितम मातुर आकर्ण्या अर्थगमं वचः संयम्य आत्मानं निश्चक्राम पितुः पुरात। पितुः पुरात, प्रत्येक श्लोकों में आचार्यों ने बहुत टीका बहुत भाव लिखे हैं, मैं तो केवल ऊपर ऊपर से जा रहा हूं। मैंने पिछले साल में केवल यह ध्रुव महाराज ध्रुव चरित्र के ऊपर 7 दिन कथा कही थी, केवल ध्रुव महाराज बोला जा सकता, 7 नहीं 70 दिन बोला जा सकता है, परंतु समय बहुत कम है। फिर भी एक बात मुझे याद आ रही है मैत्र जी विदुर जी को कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज अपने पिता के पुर को छोड़कर चले गए। एक आचार्य कहते हैं गांव भी कह सकते थे, यहां पुर क्यों कहे? तो पुर शब्द का भाव देते हैं मैत्र जी, कहना चाहते हैं हे विदुर जी, जैसे आप हस्तिनापुर छोड़कर निकल गए थे, वैसे यह ध्रुव अपने पिता का पुर छोड़कर निकल गए। बहुत सुंदर भाव एक एक शब्द में है। पितु पुराण निकल गए और ध्रुव महाराज जब घर से निकले, उस खूंखार जंगल में प्रवेश किए, तब कहते हैं जब किसी व्यक्ति के मन में भगवान को प्राप्त करने की शुद्ध इच्छा होती है, तब भगवान की कृपा से उसे शुद्ध गुरु मिलते हैं। ध्रुव महाराज की एक ही इच्छा है, भगवान की प्राप्ति। एक ही लक्ष्य है, भगवान की प्राप्ति। जब ऐसा लक्ष्य जीवन में होता है, तब भगवान की कृपा से शुद्ध गुरु मिलते हैं। और उसी समय नारद मुनि ध्रुव महाराज के सामने खड़े रह गए। नारद मुनि की, नारद जैसे गुरु ध्रुव महाराज को रास्ते में मिल गए। अब जैसे नारद मुनि जैसे गुरु मिल जाए तो धन्याति धन्य। लेकिन यहां पर एक बात मैं आप सबको कहना चाहता हूं, नारद जैसे शुद्ध गुरु तब मिलते हैं जब मन में शुद्ध भक्ति और भगवान को प्राप्त करने की इच्छा हो। और इस संसार में लोगों के मन में शुद्ध इच्छा नहीं है, लोगों को भगवान भी चाहिए और साथ में प्याज लहसुन सिगरेट तंबाकू यह भी चाहिए। तो फिर ऐसे लोगों को शुद्ध गुरु नहीं मिलते, ऐसे लोगों को ऐसे गुरु मिल जाते हैं कि भाई पियो चिलम पियो चाय पियो कांदा लहसुन सब खाते रहो। देखो भाई, शुद्ध गुरु उसे मिलते हैं जिसकी इच्छा शुद्ध हो, जो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होता है, जो जिसका दृढ़ निश्चय होता है, उसे शुद्ध गुरु मिलते हैं। और शुद्ध गुरु किसे कहा जाता है? प्राय हम सब लोग गुरु गुरु करते हैं और सब लोग गुरु बनाते हैं। आज तो लोग गुरु बनाते हैं तो ठीक है, परंतु गुरु चेले बनाने में पड़े हैं। परंतु गुरु किसे कहते हैं, गुरु किसे बनाना चाहिए, गुरु किसे मानना चाहिए, ये जानना बहुत आवश्यक है। हमारे भारतवर्ष में और खास करके देहातों में बहुत श्रद्धा है, हृदय में बहुत भाव है, परंतु कुछ पाखंडी लोग गुरु बनकर बैठ गए हैं, उनकी श्रद्धा और उनके भाव को गलत मार्ग पर लेकर जाए। देखिए गुरु कैसे होने चाहिए, शास्त्र में बिल्कुल साफ साफ लिखा है। गुरु की बहुत योग्यताएं होती हैं, सब कुछ तो नहीं, केवल पांच योग्यता मैं आपको बताऊंगा। और कुछ याद रहे या न रहे, पांच चीज याद रखिए और देखिए आप जिसको गुरु मानते हो उसमें यह है। यदि नहीं है तो वो गुरु है ही नहीं, छोड़ने की बात ही नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कैसे छोड़े, छोड़ने का प्रश्न ही नहीं है, जो गुरु है ही नहीं तो उसे क्या छोड़ेंगे। गुरु की पांच योग्यता शास्त्र में दी गई है और मैं जो भी बोलूंगा शास्त्र से बोलूंगा, श्लोक के साथ। गुरु वही बन सकता है, पहली योग्यता, जो कृष्ण का भक्त हो। कृष्ण का भक्त ही गुरु बन सकता है, अन्यथा कोई गुरु हो ही नहीं सकता। आप कहेंगे प्रमाण, तो सुनिए, कीबा विप्र कीबा न्यासी केने शूद्र नहीं, यही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। कृष्ण को जो तत्व से जानता है वही गुरु हो सकता है, कृष्ण की जो भक्ति करता है वही गुरु हो सकता है। क्या हम जिसको गुरु मानते उसमें यह है? और कृष्ण को तत्व से जानना चाहिए, फिर भले वह शूद्र हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, ब्राह्मण न भी हो, चांडाल हो, किसी भी कुल में जन्म लिया हो, कृष्ण को यदि तत्व से जानता है तो सही गुरु है, वह गुरु है। और हम पूछेंगे कृष्ण क्या है, कौन है बताइए, और मौनी बाबा बैठ जाएंगे। संसार में हमारे गांव में भी बहुत चला है, हमारे गुजरात में भी जब व्यक्ति शहरों में फेल हो जाता है, धन नहीं मिलता है, तब गांव में आकर मौन होकर बैठ जाता है और चार पांच दिन मौन बैठेगा तो गांव के लोग पूछने लगेंगे, भगवान आ गए, गुरु आ गए, मौन ही पा। और मौन इसलिए रखते हैं ताकि बोलेंगे तो पता चल जाएगा इसको कितना ज्ञान है। ज्ञान तो कुछ होता नहीं है, मौन के अलावा कुछ कर नहीं सकते। वास्तव में गुरु ऐसे होने चाहिए जो कृष्ण के बारे में जाने, कृष्ण तत्व विज्ञान को प्रकट करे, समझाए। ये पहली योग्यता। क्या है पहली योग्यता? कृष्ण के भक्त होने चाहिए। गुरु की दूसरी योग्यता सुनिए। गुरु वह हो सकता है जो अपने आप को भगवान न समझे। अपने आप को भगवान मानने वाला कभी गुरु नहीं हो सकता है, कभी नहीं। क्योंकि गुरु गुरु है, भगवान भगवान है। भगवान इष्ट तत्व है और गुरु जीव तत्व है। गुरु कभी भगवान नहीं हो सकता है। गुरु भगवान से मिलाने वाला, भगवान से जोड़ने वाला हो सकता है, भगवान नहीं। जब हम ऐसा बोलते हैं तो कुछ लोग कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं श्लोक में तो लिखा है कि गुरु ब्रह्मा जी, गुरु विष्णु, गुरु शिव जी। ये सत्य है, ये श्लोक गलत नहीं है। परंतु भक्तों, हमें श्लोक के साथ श्लोक के अर्थ को और उस श्लोक के भाव को समझना चाहिए। दो चीज होती है, केवल श्लोक को नहीं, श्लोक के साथ श्लोक का अर्थ भी कुछ अलग होता है और उसका भाव भी कुछ अलग होता है। एक ही शब्द के दो भाव होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहूं, एक ग्लास में कोई पानी डाल रहा है, कोई मुझे ग्लास में पानी दे रहा है और मैं कहूं बस, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? बस अभी पानी नहीं चाहिए। कोई ग्लास में पानी डाल रहा है और मैं कहूं तू बस, तो इसका अर्थ हुआ पानी नहीं चाहिए। परंतु पानी डालने वाले को मैं कहूं बस, इसका अर्थ क्या हुआ? अभी कम है और थोड़ा दीजिए। तो एक ही शब्द बस, इसके दो अर्थ हो गए, दो भाव हो गए। ऐसे संस्कृत के श्लोकों के बहुत सारे भाव होते हैं, अर्थ के साथ भाव भी समझने चाहिए। इस श्लोक में गुरु ब्रह्मा कहा है, परंतु गुरु ब्रह्मा नहीं, गुरु ब्रह्मा जितने पूजनीय है, आदरणीय है, गुरु विष्णु के समान आदरणीय है, गुरु शिव जी के समान आदरणीय। और यदि गुरु जी ही शिव जी है, शिव जी का काम है संसार का प्रलय करना, गुरु को कहो संसार का नहीं एक व्यक्ति को मार डाले, पता चले चलेगा कितने बड़े शिव जी हैं, पुलिस उसे जेल में डाल देगी। तो गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश जितने पूजनीय है, आदरणीय। तो गुरु की दूसरी योग्यता क्या है? कि अपने आप को भगवान नहीं मानने चाहिए। अब गुरु की तीसरी योग्यता, गुरु की तीसरी योग्यता है कम से कम अपने छह इंद्रियों को वश में करना चाहिए। वाचो वेगम मनसह क्रोध वेगम जिह्वाद वेगम उदरोपस्त वेगम एतान वेगान्यो विषहेत धीर सर्वात्मिकां पृथ्वीस शिष्या। छह प्रकार के वेग को कोई वश में करता है वही गुरु बन सकता है। छह वेग कौन से हैं? कहते वाचो वेगम, वाणी का वेग। जो अपनी वाणी को वश में रख सकता है वही गुरु हो सकता है। मनस, जो अपने मन को वश में रख सकता है वही गुरु हो सकता है। क्रोध, जो अपने क्रोध को वश में रख सकता है वही गुरु हो सकता है। बार बार जिसको क्रोध हो वह कभी गुरु नहीं बन सकता। जिह्वा को जो वश में रख सकता है वही गुरु हो सकता है। उदर और उपस्थ को जो वश में रख सकता है वही गुरु हो सकता है। इस प्रकार अपनी छह इंद्रियों को वश में रखना, नहीं तो वह गुरु गुरु नहीं है। तत्पश्चात गुरु की चौथी योग्यता, गुरु जो बोलते हैं उसका आचरण, उसका पालन उसके स्वयं अपने जीवन में होना चाहिए। आप सबको याद रह रहा है पहली योग्यता क्या थी? ये कृष्ण के भक्त होने चाहिए। दूसरी योग्यता, अपने आप को भगवान नहीं मानने चाहिए। तीसरी योग्यता, छह इंद्रियों पर उनका वश होना चाहिए। चौथी योग्यता, वे जो बोलते हैं उसका आचरण, उसका पालन उनके जीवन में होना चाहिए। नहीं तो आज के गुरु उपदेश तो बहुत बड़े बड़े देते हैं परंतु स्वयं अपने जीवन में उसका पालन नहीं करते। ऐसे गुरु यदि रात दिन बोलते रहे फिर भी सुनने वाले के जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक वे स्वयं उसका आचरण नहीं करते हैं तब तक सुनने वाले उसका आचरण कभी नहीं कर सकते हैं। आप देखिए संसार में कुछ ऐसे ऐसे गुरु हैं जिसके प्रवचन में लाखों लोग बैठते हैं परंतु हृदय परिवर्तन किसी का नहीं। हृदय परिवर्तन, जीवन में बदलाव तब आ सकता है जब बोलने वाला उस पर आचरण करे। नहीं तो कुछ गुरु ऐसे होते हैं, एक वक्त बहुत सुंदर कथा करते हैं कि एक गांव में ऐसे ही एक गुरु थे और वह जब प्रवचन देते तो पूरा गांव उसके प्रवचन में आकर बैठ गया। गंगा की धारा की तरह उनकी वाणी चलती थी परंतु उसके प्रवचन में उसकी पत्नी नहीं आती थी। कभी कभी होता है। तो एक बार गांव वालों ने उस गुरुजी की पत्नी को कहा कि आपके पतिदेव इतना अच्छा प्रवचन करते हैं, आप क्यों नहीं आती हो? तो गुरुजी की पत्नी ने कहा कि देखो, हमारे पतिदेव जब प्रवचन करने के लिए जाते हैं तब उसके लिए मुझे भोजन बनाना होता है। तो गांव वालों ने कहा एक दिन जल्दी भोजन बना लेना और प्रवचन में आ जाना। तो ठीक है, दूसरे दिन गुरुजी की पत्नी प्रवचन के पहले ही भोजन बना ली और उनके पति के प्रवचन में जाकर बैठ गई। अब यहाँ गुरुजी ने प्रवचन शुरू किया, गंगा की धारा के समान, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्न गुण वृत्ति साधो गच्छन्ति तामसा। जो लोग सतोगुण में रहकर सतोगुणी कार्य करते हैं ऊपर के लोकों में जाते हैं, रजोगुण में रहकर रजोगुणी कार्य करते हैं यहीं पर रह जाते हैं, और तमोगुण में रहकर यदि तमोगुणी कार्य करते हैं तो नरक में जाते हैं। सतोगुण में रहने के लिए सतोगुणी आहार, रजोगुण में रहने के लिए रजोगुणी आहार, तमोगुण में रहने के लिए तमोगुणी आहार। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि द्विवास्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। आहार के ऊपर ही हमारा जीवन का निर्भर है। यदि आहार शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी तो कार्य शुद्ध होंगे, कार्य शुद्ध होंगे तो हम भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। इसलिए भगवान के धाम में जाना है तो सतोगुणी आहार करना चाहिए, और नरक में जाना है तो तमोगुणी आहार करना चाहिए, और नरक में जाने से बचने के लिए तमोगुणी आहार अर्थात प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। सब लोग ने ताली बजाई, वाह, सब लोग खुश हो गए। उसी समय उस गुरुजी की पत्नी खड़ी होकर अपने घर पर दौड़ कर चली गई। प्रवचन के बाद गुरुजी घर पर आए, पत्नी ने भोजन परोसा। तो गुरुजी ने जैसे ही पहला निवाला अपने मुख में डाला, दाल कर ही थूक दिया। अरे छी, पत्नी को कहा कि आज तुम्हें क्या हो गया? आज तक तो इतना अच्छा भोजन बनाती थी, आज इतना बेकार भोजन क्यों बनाया? तो गुरुजी की पत्नी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि पतिदेव, आज तक मैं आपका इतना अपराध करती थी, आपको परेशान करती थी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे अपराध हो गया। गुरुजी ने कहा क्या हुआ? कहा मैं आज आपके प्रवचन में आई थी और मुझे आज पता चला कि प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो मैं तुरंत घर पर आई और प्याज लहसुन वाला भोजन मैंने फेंक दिया और आपके लिए बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाया। तब गुरुजी ने कहा, अरे पागल, वह तो गांव वालों के लिए है, मेरे लिए तो डबल तड़का मारकर बनाना है। ऐसे गुरु के मुख से कथा सुनोगे और ऐसे लोगों को गुरु बनाओगे तो जीवन में कभी कल्याण नहीं होगा। और प्राय संसार में ऐसे ही गुरु बनकर बैठ गए हैं, अपने जीवन में इसका कुछ पालन नहीं और दूसरों को बड़े बड़े उपदेश देते हैं। तो गुरु वह हो सकता है जो बोलता है, उपदेश देता है, उसका आचरण उसके स्वयं उनके जीवन में होना चाहिए। और गुरु की पांचवी योग्यता, गुरु की पांचवी योग्यता है कि वे संप्रदाय के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के बनाए हुए चार संप्रदाय के अंतर्गत गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए। आप कहेंगे संप्रदाय शब्द को सबने सुना होगा, परंतु वास्तव में देखा जाए तो इस संसार में चार संप्रदाय ही शुद्ध संप्रदाय है, बाकी के सब संसार के लोगों ने बना लिया है। भगवान के द्वारा प्रदत्त मात्र चार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। यदि कोई इस चार संप्रदाय के अंतर्गत गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा ग्रहण करता है या ज्ञान प्राप्त करता है तो उसे शुद्ध ज्ञान मिलता है। और यह चार संप्रदाय में वर्तमान में यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना हो, गुरु बनाना हो, तो एकमात्र ब्रह्म संप्रदाय ही संभव है, क्योंकि कुमार संप्रदाय प्राय लुप्त हो चुका है, श्री संप्रदाय मात्र श्रीरंगम में है, रुद्र संप्रदाय का कोई प्रचार नहीं है, ब्रह्म मत्व गौड़ीय संप्रदाय के द्वारा बहुत सुंदर प्रचार हो रहा है। और इस संप्रदाय में गुरु शिष्य परंपरा में आप ज्ञान प्राप्त करोगे या दीक्षा लोगे, तुरंत आप भगवान के पास पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस संप्रदाय में बिल्कुल गुरु शिष्य परंपरा में यह संप्रदाय है। गुरु शिष्य परंपरा अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद ने वेदव्यास जी को दिया, वेदव्यास जी ने मध्वाचार्य को दिया, मध्वाचार्य ने पद्मनाभ को दिया, पद्मनाभ ने नरहरि को दिया। तो इस प्रकार कृष्ण ने इसे इसे इसने, तो कृष्ण ने जो ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था वही ज्ञान नरहरि के पास है। क्यों? क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में यह ज्ञान आ रहा है। तब नरहरि ने वही ज्ञान माधव को दिया, माधव ने अक्षोभ्य को, अक्षोभ्य ने जयतीर्थ, जयतीर्थ ने ज्ञान सिंधु, ज्ञान सिंधु ने दयानिधि, दयानिधि ने विद्यानिधि को, विद्यानिधि ने राजेंद्र को, राजेंद्र ने जयधर्म को, जयधर्म ने पुरुषोत्तम को, पुरुषोत्तम ने ब्रह्मण्य तीर्थ को, और ब्रह्मण्य तीर्थ के शिष्य हुए व्यास तीर्थ, व्यास तीर्थ के शिष्य हुए लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति के शिष्य हुए माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी के शिष्य हुए ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के शिष्य हुए श्री चैतन्य महाप्रभु। इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा में इसके शिष्य है, इसके शिष्य है, इसके शिष्य है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी के शिष्य हुए रघुनाथ और जीव, रघुनाथ जीव के शिष्य हुए कृष्णदास, कृष्णदास के नरोत्तम, नरोत्तम के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, विश्वनाथ के जगन्नाथ बाबाजी महाराज, जगन्नाथ बाबाजी महाराज के भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के शिष्य हुए गौर किशोरदास बाबाजी महाराज, और गौर किशोरदास बाबाजी महाराज के शिष्य हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। अब आप देखिए, क्योंकि ये सब गुरु शिष्य, कृष्ण के शिष्य ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के ये, इसके ये, इसके ये, चलते 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 ये सारी परंपरा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास आ गई। और भक्तों, हमारा परम सौभाग्य है के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के शिष्य हुए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। इस्कॉन संस्था की स्थापना करने वाले प्रभुपाद। इसलिए प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज, उसके गुरु ये, उसके गुरु ये, इसके गुरु ये, और उसके गुरु भगवान श्री कृष्ण, जिसे कहते हैं शुद्ध परंपरा। ऐसी शुद्ध परंपरा में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे या दीक्षा लेंगे तब भगवान की प्राप्ति होगी। ये संसार में एरे गेरे घूमने फिरने वाले जटाधारी मौनी बाबा से दीक्षा लेने से जीवन में किसी का भला नहीं होगा। प्रहलाद महाराज को कहते हैं, अंधा या तांदे उपनीय माना, ये गुरु शिष्य परंपरा को छोड़कर यदि कोई बोगस गुरु को स्वीकार करता है तो वैसे ही होगा आप जैसे समुद्र में डूब रहे हो और डूबते डूबते कुत्ते की पूंछ पकड़ लो। समुद्र में डूबते डूबते कुत्ते की पूंछ पकड़ने से क्या होगा? कुत्ता भी गिरेगा और हम भी गिरेंगे। ऐसे गलत गुरु को चुन लिया, गलत गुरु को बना लिया, गुरु तो नरक में जाने ही वाला है, हम भी नरक में। अंधा यथांधो, जैसे अंधा यदि रोड क्रॉस कर रहा है और रोड पास करने के लिए दूसरे किसी अंधे का हाथ पकड़ लिया तो दोनों अंधे जाएंगे, दोनों मरेंगे। गुरु चेला दोनों नरक में। इसलिए गुरु ऐसे बनाने चाहिए जो शुद्ध हो, जो ये गुरु शिष्य परंपरा में। और गुरु का अर्थ होता है ज्ञान देने वाला। गु शब्द अंधकारोस्ति, रु शब्द तत् निरोधक, जो ज्ञान के अंधकार से प्रकाश में, ज्ञान की तरफ लेकर जाए, इसे गुरु कहते हैं। तो इसे शुद्ध गुरु को स्वीकार करके हमें भगवान की भक्ति में अग्रसर होना चाहिए। तब कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि तो फिर प्रभु जी हमने तो गुरु बना लिए हैं, तो क्या वो गुरु को कैसे छोड़े, अपराध लगेगा? पद्म पुराण में बिल्कुल साफ साफ लिखा है, यदि गुरु अवैष्णव स्यात्, गुरु यदि अवैष्णव है तो वह गुरु गुरु है ही नहीं। तुरंत जाकर किसी वैष्णव शुद्ध गुरु को गुरु बनाना चाहिए। और ऐसे गुरु को छोड़ने से थोड़ा भी पाप और अपराध नहीं लगेगा। ऐसे गुरु को यदि आप पकड़ कर रखोगे तो जीवन में अपराधी बनोगे, पाप के भागी बनोगे, क्योंकि आप उस गुरु को बढ़ावा दे रहे हो जो गुरु कुछ काम के ही नहीं है। इसलिए शास्त्र के अनुसार, देखो मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो भी बोल रहा हूं शास्त्र से बोल रहा हूं, और शास्त्र के अनुसार गुरु में कम से कम ये पांच चीज होनी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाएंगे भगवान की प्राप्ति होगी। ध्रुव महाराज को ऐसे गुरु की प्राप्ति हुई है और 6 महीने में भगवान उनके सामने होंगे, 6 महीने। और ऐसे गुरु नहीं है, 600 जन्म भी ले लोगे फिर भी भगवान नहीं मिलेंगे, क्योंकि भगवान की प्राप्ति करना गुरु के ऊपर निर्भर होता है, शुद्ध गुरु की शरण में जाए। आप कहोगे तो ऐसे गुरु कहाँ ढूंढे हम? कोई बात नहीं, जब तक ऐसे गुरु नहीं मिलते हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी आप सबके घर में आ सकते हैं, पूरे जगत के गुरु है। प्रभुपाद जी को गुरु बनाइए, उनकी किताबों का अध्ययन कीजिए, भगवद गीता भागवतम अन्य किताब को पढ़िए, प्रभुपाद जी आप सबके हम सबके गुरु हैं। और फिर जब भक्ति में आप दृढ़ हो जाते हो तो प्रभुपाद जी की परंपरा में आने वाले बड़े बड़े सन्यासी आपको दीक्षा दे सकते हैं, आपके गुरु बन सकते हैं। इस प्रकार से श्रद्धा और भाव के साथ ज्ञान होना चाहिए कि गुरु इसे कहा जाता है। बस गांव में आ गए, दीक्षा देने लगे तो हम भी बैठ जाएं, कंठी पहन लें, ये तो केवल स्टैंप है, स्टैंप मारने से कोई गुरु नहीं बनते। इस प्रकार से शुद्ध गुरु की आवश्यकता है। और ऐसे शुद्ध गुरु तब मिलते हैं जब शुद्ध इच्छा होती है। ध्रुव महाराज की शुद्ध इच्छा है मुझे भगवान ही चाहिए, तब ऐसे गुरु मिलेंगे नारद की परंपरा वाले, नहीं तो फिर मिलेंगे बोगस गुरु। आप जो करना है करो, मेरे मंत्र का जाप करो, आपको भगवान मिल जाए, ऐसे भगवान मिलते हैं। एक बार एक व्यक्ति ऐसे ही गुरु के पास गया, गुरु जी कुछ कीजिए। गुरु ने कहा बच्चा मेरा ध्यान कर और मेरे मंत्र का जाप कर, तुझे वैकुंठ मिल जाएगा। व्यक्ति ने कहा वाह गुरु जी वाह, आज मैं आप पर खुश हूं, जाओ मैं पूरा महाराष्ट्र आपको सौंप रहा हूं, आपको दान में दे रहा हूं। गुरु ने कहा तू मुझे महाराष्ट्र दे रहा है, क्या महाराष्ट्र तेरे बाप का है? महाराष्ट्र तेरे बाप का है? शिष्य ने कहा गुरुजी तो क्या वैकुंठ आपके बाप का है? वैकुंठ वैकुंठ पति का है, जब तक वैकुंठ पति भगवान कृष्ण का नाम नहीं लेंगे तब तक वैकुंठ नहीं मिलेगा। ये गुरु गुरु का ध्यान करने से भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान का उसे वैकुंठ पति भगवान कृष्ण का ध्यान, भगवान कृष्ण का नाम लेना चाहिए। आज के गुरु भगवान बनकर बैठ गए हैं और जनता को लूट रहे हैं, लेकिन इससे सतर्क रहना चाहिए। ध्रुव महाराज को नारद मुनि मिले हैं और जब गुरु आज ने गोद में नहीं बैठने दिया, नारद ने कहा तेरा पिता मेरा शिष्य है, तानपाद मेरा शिष्य है, चल मेरे साथ, मैं उसको कहूंगा गोद में बिठा लेगा। गुरु ने कहा अब उस गोद में नहीं बैठना है, अब उस उत्तानपाद के बाप मनु महाराज की गोद में भी नहीं, उसके बाप ब्रह्मा की गोद में भी नहीं, उससे भी बड़ा राज्य चाहिए और दिखा दूंगा संसार को, मुझे घर से निकाला है, मैं उससे भी बड़ा राज्य प्राप्त करना चाहूंगा। अब उसकी गोद में कौन बैठे? ब्रह्म से, ब्रह्म पद से भी बड़ा लोग प्राप्त करना है, और नारद जी देखो आपके उपदेश तो बहुत अच्छे हैं, परंतु मेरी सौतेली माँ ने ऐसे बाण मारे हैं, हृदय में इतना बड़ा छेद हो गया है कि आपका उपदेश इसमें टिक नहीं रहा है, गिर जा रहा है। और मैं आपको भी कह रहा हूं, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, आपको सहायता करनी है तो करो, नहीं तो आप भी यहां से निकलो, हवा आने दो। नारद जी ने कहा ये तो बहुत योग्य शिष्य है, शिष्य बनाने लायक है। नारद जी ने कहा बेटा ध्रुव, तुम्हारा जो निर्णय है बिल्कुल सत्य है, और जिस भगवान के पास तुम जा रहे हो वह भगवान यदि प्रसन्न हो गए तो वो तुम्हें जो चाहे वो दे सकते हैं, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी भी हाथ में कमल लेकर भगवान के पीछे पीछे घूमती हैं। संसार के लोग जिस लक्ष्मी को चाहते हैं वह लक्ष्मी उस भगवान के पीछे घूमती है, वह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की आराधना है। परंतु उस भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले योग्य स्थान में जाने की आवश्यकता है। नारद मुनि ने कहा कि मैं जो स्थान बता रहा हूं उस स्थान में जाकर तुम भगवान विष्णु की आराधना करो। देखो भगवान को प्राप्त करने के लिए स्थान की बहुत आवश्यकता है। नारद मुनि ने स्थान का निर्देशन किया, तत्ताच गच्छ भद्रम ते यमुना या स्तटम शुचि। ध्रुव भगवान की प्राप्ति करने के लिए वृंदावन में, और वृंदावन में यमुना जी के तट पर पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे, मधुवन नामक जगह में यमुना जी के तट पर जाओ, यमुना जी में स्नान करना, स्नान करके आसन बिछाकर उसके ऊपर खड़े रहकर मैं जो मंत्र दे रहा हूं उस मंत्र का जाप करना। नारद मुनि ने मंत्र दिया और ध्रुव महाराज नारद मुनि को प्रणाम करके निकले हैं। ध्रुव महाराज वृंदावन में यमुना के तट पर पहुंचे, यमुना में स्नान किए और स्नान करके दोनों पैरों पर खड़े रहकर दोनों हाथ जोड़कर ध्रुव महाराज ने तपस्या प्रारंभ की, और तपस्या के साथ साथ भगवान का नाम ले रहे हैं। आइए ध्रुव महाराज भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान का नाम ले रहे हैं, हम भी ध्रुव महाराज के साथ भगवान का नाम का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे हैं, हाथ में भगवान का नाम ले रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। कपीन्द्रवज्राशन आत्मवृत्त्यनुसारेण मासमिन्येर्जयन् हरिः। गुरु महाराज तपस्या करने के लिए खड़े हैं। पहले महीने में ध्रुव महाराज ने केवल 3 दिन में एक बार बेर खाकर अपना जीवन बिताने लगे। देखिए भगवान की भक्ति में भगवान को प्रसन्न करने के लिए भोजन को वश में करना बहुत आवश्यक है। यदि भोजन वश में नहीं है तो भजन नहीं हो सकता। भजन करने के लिए भोजन को वश में करना। पहले महीने में 3 दिन में एक बार केवल केवल बेर खाकर अपना जीवन बिताने लगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे षष्ठे षष्ठेर्भगोदिने त्रीणपर्णादिभिशिरणे पितानो गर्जयन् विभो।
एक महीना बिता, दूसरे महीने में ध्रुव महाराज ने अपनी तपस्या और बढ़ाई। अब ध्रुव महाराज 6 दिन में केवल एक बार सूखे घास और सूखे पत्ते खाकर अपना जीवन बिताने लगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तपस्या करते 2 महीने बीत गए, 3रा महीना प्रारंभ हुआ। 3रे महीने में और अपनी तपस्या को बढ़ा रहे हैं। कहते 9 दिन में एक बार केवल जल पीकर ध्रुव महाराज अपना जीवन बिताने लगे। अपनी तपस्या को और कड़ी किए और भगवान का नाम और तीव्रता से लेते गए।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। द्वादशे द्वादशे हनि वायु वक्षजित श्वासो जायन देवम धारय।
जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे अपनी तपस्या और कड़ी करते जा रहे हैं। 3 महीना बीत गया, 4था महीना प्रारंभ हुआ और 4थे महीने में ध्रुव महाराज 12 दिन में एक बार केवल वायु पीकर अपना जीवन बिताने लगे और भगवान के नाम को और दृढ़ता के साथ लेने लगे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
पांचवा महीना प्रारंभ हुआ और पांचवे महीने में ध्रुव महाराज ने वायु लेना भी बंद कर दिया, अपनी तपस्या को बढ़ाए और तीव्रता से भगवान का नाम लेना।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भूतेन्द्रियाशयम् ज्ञायं भगवतो रूपम् नाद्राक्षे किञ्चनापरम्।
पांच महीने बीत गए, छठा महीना प्रारंभ हुआ और छठे महीने में सांस लेना भी बंद है और छठे महीने में ध्रुव महाराज भगवान से एक के भाव कर रहे हैं। संसार से दृष्टि हटाकर एकमात्र भगवान ने ही अपनी दृष्टि को स्थित किया और भगवान के नाम में मग्न हो गए।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे और नाव डगमगाने लगती है वैसे यह धरणी डगमगाने लगी। देवता आकुल व्याकुल हो गए, सर्व लोग भगवान के शरणों में गए। ताईमाम प्रभु, ध्रुव की तपस्या के कारण ब्रह्मांड डगमगाने लगा है। भगवान विष्णु ध्रुव महाराज के पास आए, ध्रुव महाराज के सामने खड़े हैं और भगवान विष्णु ने ध्रुव महाराज को दर्शन दिया। बोले भगवान विष्णु की, विष्णु भगवान की
जय,
विष्णु भगवान की
जय।
शंख चक्र सकिरीट कुंडलम सपीत्र वस्त्रम
सरसी रुहे क्षण सहार वक्ष स्थल कोस्तु भश्रिय नमामि विष्णु शिरसा चतुर। इस प्रकार भगवान विष्णु ध्रुव महाराज के सामने 6 महीने में प्रकट हो गए। ध्रुव महाराज भगवान के सामने खड़े हैं। ध्रुव महाराज ने भगवान का दर्शन किया। मैत्री मुनि कहते हैं जैसे आंखों के द्वारा ध्रुव महाराज भगवान को पी रहे हैं, इस प्रकार से दर्शन हो रहा है। भगवान को प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद ध्रुव महाराज स्तुति करना चाहते हैं, परंतु 5 साल के बालक हैं, कभी स्कूल में भी नहीं गए हैं, वेदों के मंत्र को नहीं जानते हैं, शास्त्र के श्लोक को नहीं जानते हैं, किस भाषा में भगवान को स्तुति की जाए ध्रुव महाराज को कुछ नहीं पता है, परंतु हृदय में इच्छा है भगवान को स्तुति करने की। भक्तों, जब भगवान को प्रणाम किया जाता है तब प्रणाम तब पूर्ण होता है जब प्रणाम के साथ भगवान की स्तुति करें। ध्रुव महाराज स्तुति करने की इच्छा है, परंतु उनके पास शब्द नहीं है क्या बोले। परंतु भगवान ने देखा कि ध्रुव की इच्छा है स्तुति करने की। उस समय भगवान विष्णु ने अपने हाथ में 5 जन्य नामक शंख था। यह शंख ध्रुव के गाल के साथ स्पर्श किया। ध्रुव के गाल के साथ स्पर्श करते ही वह शंख ब्रह्म शंख की कृपा से ध्रुव महाराज के हृदय में समस्त वेद शास्त्र और पुराणों का ज्ञान प्रस्फुटित हो गया। गीता में भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां प्रयान्ति। अर्जुन, यदि कोई सतत रूप से मेरा भजन करता है तो उसे मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। ध्रुव महाराज को भगवान ने ज्ञान प्रदान किया और इस वेदों के ज्ञान को प्राप्त करके ध्रुव महाराज 12 श्लोक में भगवान विष्णु को स्तुति किए हैं। शिवा श्रीधर स्वामी कहते हैं कि वेद को पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है, और समय भी हो जाए तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, परंतु यदि वेदों के बारे में जानना है तो ध्रुव महाराज के द्वारा 12 श्लोक में जो स्तुति हुई है इसे यदि आप सुन लोगे समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ध्रुव महाराज के मुख से निकले हुए ये 12 श्लोक आकाश में 12 आदित्य की तरह, सूर्य की तरह चमक रहे हैं। ध्रुव महाराज भगवान विष्णु को बहुत सुंदर स्तुति किए हैं। आइए हम ध्रुव महाराज की स्तुति का आस्वादन करें। सर्वप्रथम ध्रुव महाराज भगवान को कहते हैं योऽन्तः प्रविश्य मम वा च मिमां प्रसूता सञ्जीवयत्यखिल शक्तिरस्वदाना अन्यांशहस्तचरण श्रवणत्वगादिन प्राणानमो भगवते पुरुषाय तो। मैं उस परम पुरुष भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिस भगवान विष्णु ने मुझ अबुद्ध जीव को बुद्धि प्रदान की है। मेरे पास कोई ज्ञान नहीं था, परंतु भगवान श्री विष्णु की कृपा से मुझे आज सभी वेदों का ज्ञान हो गया है। जिस प्रकार मुझे भगवान विष्णु की कृपा से ज्ञान हुआ, उसी प्रकार अंतः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ताम उसी प्रकार भगवान विष्णु सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठकर सभी जीवों को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। अखिल शक्ति धर स्वधामना, भगवान विष्णु अखिल शक्ति धर है। आज हम अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं, यह सारी शक्ति भगवान विष्णु से आती है। भगवान विष्णु जब शक्ति देना बंद कर देवे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यह शरीर को शक्ति आत्मा से मिलती है। आप देखते हो जैसे ही आत्मा इस शरीर से चली जाती है शरीर कुछ नहीं कर सकता है, परंतु आत्मा को भी शक्ति देने वाला तत्व यदि कोई है तो वह है परमात्मा भगवान विष्णु। जिस भगवान विष्णु की शक्ति से संसार के जीव है, जिस भगवान विष्णु की शक्ति से यह चर अचर पूर्ण जगत शक्तिमान बना हुआ है, उस भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूं। इस प्रकार से गुरु महाराज कहते हैं वास्तव में भगवान ही अखिल शक्ति धर है। सदामना यद्यपि अपने धाम में बैठे हैं परंतु वहां बैठे बैठे हम सबको शक्ति का संचार कर रहे हैं। यद्यपि ध्रुव महाराज की स्तुति के एक एक श्लोक के ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है, अब तो मैं बारंबार आपको कह रहा हूं इस बात को कि भागवत के प्रत्येक श्लोक को के ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है, क्योंकि वास्तव में हम श्लोक की व्याख्या आपके सामने नहीं कर रहे हैं, हृदय में बहुत दुख हो रहा है। और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की इच्छा और आदेश है कि प्रत्येक श्लोक का रसास्वादन होना चाहिए, परंतु यथा श्रोता यथा श्रुति यथा मति, देश काल पात्र के अनुसार हम यहाँ पर कोई व्याख्या नहीं कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूं तो भागवत के प्रति एक अपराध कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर मैं यदि आपको कह दूंगा संपूर्ण भागवत की कथा कर रहा हूं तो आपके मन में होगा कि 7 दिन में संपूर्ण भागवत हमने सुन लिया, परंतु यह सोचना भी एक अपराध है। 7 दिन में संपूर्ण भागवत को नहीं सुन सकते। भागवत में 18,000 श्लोक है, एक श्लोक की भी व्याख्या कोई 7 दिन सुने फिर भी वह पूर्ण नहीं हो सकती। फिर भी समय कम होने के कारण मन को मना लेते हैं कि सुन लिया है संपूर्ण। ध्रुव महाराज आगे कहते हैं एकस्मैव भगवन इदम आत्मशक्त्या माया के यूरोप रूप गणया महदाज्य शेषम सृष्टवान विश्य पुरुष सद्गुणेशु नानैव दारुषु विभाव असत विभाती। ध्रुव महाराज ने जब भगवान को कहा कि प्रभु आप सब लोगों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हो और आप ही सबको शक्ति दे रहे हो, मानो भगवान पूछे कि ध्रुव तुम कह रहे हो कि मैं सब लोगों के शरीर में विद्यमान हूं, यदि मैं एक सबके हृदय में हूं तो सबके रूप समान होने चाहिए, सबके स्वभाव सबके मन ये सब कुछ समान होना चाहिए। तो देखा गया है कुछ लोग बहुत काले हैं कुछ लोग गोरे हैं, ऐसा क्यों है? तब ध्रुव महाराज कहते हैं कि प्रभु आप उस लकड़े में जलने वाली अग्नि के समान हो, जैसे लकड़े में अग्नि होती है, भारत के लकड़े को जलाओ तो भी उसमें अग्नि होती है, अमेरिका में जलाओ वहां भी अग्नि होती है, तो भारत में रहने वाले जीवों में भी परमात्मा है, अमेरिका लंदन सबके जीवों में परमात्मा है, परंतु लकड़ी का स्वरूप जैसा होता है वैसा उस अग्नि का स्वरूप होता है। तो शरीर जैसा व्यक्ति का है वैसा उनका रूप होता है, परंतु अग्नि सभी लकड़ियों में होती है, ऐसे भगवान सभी जीवों के हृदय में। ध्रुव महाराज अपनी स्तुति में हृदय से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि प्रभु इस संसार में रहने वाले जीव को आपने क्या नहीं दिया? कल्पना करो भक्तों, भगवान ने जो हमें दिया है यदि हम वो याद कर लें तब भी हम भगवान की भक्ति करने लगेंगे। केवल याद करो भगवान ने हमें क्या क्या दिया, देने में क्या बाकी रखा है, कोटिन मुख कही जात प्रभु के एक एक उपकार। करोड़ों करोड़ों मुख भी यदि हमें मिल जाए फिर भी भगवान के एक उपकार का बदला भी हम नहीं चुका पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, इतना कुछ भगवान। अब देखिए, सबसे पहले भगवान ने हमको इतना सुंदर शरीर प्रदान किया है। ये शरीर इतना कीमती है, इसकी कीमत क्या है जानते हैं? अमूल्य है। इतना अमूल्य शरीर भगवान ने आपको दिया है, हमको दिया है। मैं आपको कहूं कि आपके दोनों पांव काट कर दे दो 10 करोड़ रुपये दूंगा, कोई देने के लिए तैयार है? 10 करोड़ रुपये मिलेंगे दोनों पांव काट कर दे दो, कोई नहीं देगा। इसका अर्थ यह हुआ कि आपके पांव की कीमत 10 करोड़ की है। 10 करोड़ में भी आप देने के लिए तैयार नहीं है, तो कम से कम कीमत 10 करोड़ की हुई। अब मैं कहूं कि 10 करोड़ दूंगा, दोनों हाथ काट कर दे दो, कोई नहीं, हाथ की कीमत भी 10 करोड़ हुई। अब मैं कहूं कि 50 करोड़ रुपये दूंगा, आपका सिर काट कर रख दो यहां पर, कौन देगा? तो ये सिर की कीमत 50 करोड़ की हुई। भक्तों, इस प्रकार से गिनने लगो, इतना अमूल्य शरीर भगवान ने हमें दिया है जिसकी कोई कीमत नहीं है, कोई चुका नहीं पा सकता है। और केवल शरीर ही नहीं, इस शरीर को टिकाने के लिए भगवान हवा देते हैं, ऑक्सीजन। कल्पना करो, भगवान हवा और ऑक्सीजन देना बंद कर दे, कहां जाएंगे? ऑक्सीजन की कीमत जानते हो? आईसीयू में जिसको रखा जाता है हॉस्पिटल में, उसे पता है। ऑक्सीजन की बोतल जिसे चढ़ाते हैं उसे पूछना कि कितने रुपए किलो ऑक्सीजन मिलता है। जन्म से लेकर आज तक भगवान ने जो ऑक्सीजन दिया है उसका बिल भेज दे, पूरा जीवन निकल जाएगा फिर भी वह चुका नहीं पाएंगे। कितना ऑक्सीजन भगवान ने दिया है, क्या नहीं दिया है, ध्रुव महाराज एक एक बात याद करा रहे हैं। इतना सुंदर शरीर दिया और शरीर में इतनी सुंदर आंखें दी, भगवान ने अंधा भी नहीं बनाया, बेरा गूंगा भी नहीं बनाया, लंगड़ा भी नहीं बनाया, इतना सुंदर शरीर दिया। और इस शरीर को टिकाने के लिए हवा दिया, हवा के साथ साथ पानी दिया। यदि भगवान पानी न दिए होते तो क्या होता हमारा? पांडव एकादशी के दिन निर्जला हम लोग रहते हैं तब तो पानी की वैल्यू पता चलती है कि नहीं, पानी कितना कीमती। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं पानी भगवान ने थोड़ी ना दिया है, पानी तो H2O से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। उस मूर्ख को कहना चाहिए H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या तुम्हारे बाप ने बनाया है? यह भी भगवान का है। अल्टीमेटली ये सब कुछ भगवान का है। भगवान ने पानी दिया, हवा दिया, सूर्य प्रकाश। आप कल्पना करो, यदि भगवान यह सूर्य प्रकाश न देते तो बिल भर भर कर मर गए होते। बिजली का बिल केवल शाम को शुरू करते हैं लाइट, फिर भी कितना हम लोग करते हैं, इतना बिल आ रहा है। इतना कुछ भगवान देते हैं, इतनी सुंदर बुद्धि प्रदान किए। और नहीं, भगवान ने हमें भूखा रखा है, इतने सुंदर परिवार में जन्म दिया, भगवान ने इतना कुछ दिया, इतना सुंदर शरीर दिया, शरीर को टिकाने के लिए हवा पानी प्रकाश भगवान ने दिया, इतनी सुंदर आंख नाक कान दिया, लेकिन फिर भी संसार का जीव भगवान के प्रति इतना कृतज्ञ है कि इतना कुछ भगवान से लेने के बाद भी भगवान को थैंक यू नहीं करता। धन्यवाद कहने का समय संसार में रहने वाले जीव को नहीं है। इतना कुछ भगवान से लेकर बैठा है लेकिन फिर भी धन्यवाद कहने का समय नहीं है। और अपने आप को तो बहुत बड़ा सोफिस्टिकेटेड मानता है, हम तो बुद्धिमान है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी का फोन नंबर लिखने के लिए पेन मांगते हैं, जरा पेन दीजिए, और फोन नंबर लिखते हैं और पेन जब वापस लौटाते हैं तो थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। विचार करो, छोटा सा नंबर लिखने के लिए किसी से पेन उधार लिए हैं, वो पेन वापस देने में हम थैंक यू बोलते हैं, और जिसने ये शरीर दिया, हवा पानी प्रकाश, इतनी इतनी वस्तुएं दी, परंतु उसे थैंक यू कहने का समय हमारे पास नहीं है। कितना दुर्भाग्य है। और इतना कुछ भगवान से लेकर बैठे हैं और उसे धन्यवाद भी नहीं कहते हैं तो ये लोग कृतज्ञ है। ऐसे लोगों के लिए नरक में भी जगह नहीं है, ये लोग सड़ते रहेंगे और मरेंगे। भले पूर्व जन्म के कर्मवश ये जीवन में सुख शांति और धन मिला है, परंतु आने वाला जीवन बहुत बेकार होगा, बहुत बेकार होगा। भगवान ने इतना कुछ दिया है, फिर भी यदि इसका एहसास भी हो जाए ना तो जीव भगवान की भक्ति में लग सकता है, परंतु हमें इसका एहसास भी नहीं है। ध्रुव महाराज कहते हैं दुख के साथ, ध्रुव महाराज अगले श्लोक में कहते हैं, नूनम विमुष्टमय तव माय यात हे प्रभु। हे भगवान, इस संसार के लोग इतने मूर्ख हो गए हैं, माया के द्वारा ये सबकी बुद्धि इतनी हर ली गई है कि आपके मंदिर में आकर भी संसार के लोग भौतिक वस्तु मांगते हैं। पहले तो आपके मंदिर में आते नहीं है, आपका भजन भक्ति करते नहीं है, और भजन भक्ति जो लोग करते हैं वो आपसे क्या मांगते हैं, संसार की तुच्छ वस्तु। संसार की तुच्छ वस्तु जो नरक में भी मिलती है, ध्रुव महाराज कहते हैं नरकेपि निनाम, नरक में भी जो सुख मिलता है ऐसा तुच्छ सुख भगवान के सामने खड़े खड़े मांगता है, मुझे गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, धन मिल जाए। क्या गाड़ी मिलने पर सुखी हो जाएंगे? पूछ लो जो गाड़ी वाले बैठे हैं, पूछिए उसे, सुखी हैं आप? गाड़ी वाले सोचते हैं हेलीकॉप्टर मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे। आइए हमारे साथ, पूछिए हेलीकॉप्टर वालों को, क्या वे सुखी हैं? हेलीकॉप्टर वाले सोचते हैं चार्टर प्लेन मिल जाए सुखी हो जाएंगे, कोई सुखी नहीं है। और भगवान से मांगते हैं धन मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, भोजन मिल जाए, ये तुच्छ सुख तो ध्रुव महाराज कहते हैं नरक में भी है। और जो लोग ऐसा तुच्छ सुख मांगते हैं, ध्रुव महाराज उसे मूर्ख कह रहे हैं, मूढ़ है वो, बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी संसार की तुच्छ वस्तु भगवान से नहीं मांगेगा, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति जानता है इस संसार की कितनी भी वस्तु मिल गई, धन के ढेर के ऊपर बैठ जाए, सभी होटल उनके नाम में हो जाए, सभी वस्त्र, सभी भोजन, सब कुछ मिल जाए, फिर भी वह सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि दुख का कारण यह जगत है। जब तक व्यक्ति इस जगत में है उसे कुछ भी मिल जाए वह सुखी नहीं हो सकता है। तो भगवान से मांगना चाहिए कि हमें इस जगत से निकालकर आपके पास बुलाओ, आपके आपका दाम प्रदान करो, परंतु यह न मांगते हुए इस जगत के ही कीड़े जैसे सुख मांगने में सब लोग पड़े हैं, मूर्ख है वह लोग। बहुत सुंदर दृष्टांत मुझे याद आ रहा है इस उपलक्ष में। एक बार एक जेल में कई सारे कैदी उम्र कैद की सजा भोगत रहे थे, उम्र कैद की सजा भोगत रहे थे, परंतु एक दिन की बात, एक प्राइम मिनिस्टर का जन्मदिन था और उनकी इच्छा हो गई कि आज इस सेंट्रल जेल में जितने भी कैदी उम्र कैद की सजा भोगत रहे हैं मैं सबकी इच्छा पूर्ण करूंगा, जो चाहे वह दूंगा। तो सेंट्रल जेल में बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया, स्टेज बनाया गया, प्राइम मिनिस्टर नेता वहां पर कुर्सी पे आकर बैठ गए, सभी जेल के उम्र कैदियों को लाइन में खड़ा रखा गया और एक के बाद एक सब लोग आते गए। ध्यान से सुनिए, पहला कैदी उस प्राइम मिनिस्टर वड़ाप्रधान के पास आया और बड़ा प्रधान ने पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो पहले कैदी ने कहा कि जिस दिन से मैं यहां पर आया हूं केवल खिचड़ी खा रहा हूं, खिचड़ी खा खा कर थक गया हूं, कुछ अच्छा भोजन खाने को मिल जाए तो खाना। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस कैदी के लिए इस जेल में एक होटल शुरू कर दो, जो खाना है खाए, दाल बाटी खाना है खाए, पंजाबी खाए, पाव भाजी खाए, जो खाता रहे। चलो दूसरा कैदी आया, पूछा तुम्हें क्या चाहिए। दूसरे कैदी ने कहा जिस दिन से यहां पर आए हैं ये एक ही कपड़ा पहन कर रखा हूँ, इसमें बदबू आ रही है। जींस पैंट, टी शर्ट, शर्ट ऐसा कुछ मिल जाए तो आनंद आ जाए। बड़ा प्रधान ने कहा इसके लिए एक कपड़े की दुकान खोल दी जाए, जो कपड़े चाहिए वो दे। तीसरा व्यक्ति आया, पूछा तुम्हें क्या चाहिए? तीसरे व्यक्ति ने कहा जो मांगूंगा वो दोगे? कहा इसलिए तो आया हूं। कहा यहां पर हम सुबह से लेकर शाम तक पत्थर तोड़ते हैं, काम करते हैं, केवल 10 रुपया मिलता है, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए तो आनंद आ जाए। कितना चाहिए? 5 करोड़, इसे 10 करोड़ दे दो। 10 करोड़ दे दिया और चला गया। चौथा व्यक्ति आया, प्राइम मिनिस्टर ने पूछा आपको क्या चाहिए? चौथे ने कहा जो मांगूंगा वो देंगे? प्राइम मिनिस्टर ने कहा, तब चौथे ने कहा एक काम करो प्राइम मिनिस्टर जी, मुझे इस जेल से बाहर निकाल दो। कैसे निकाल? हृदय पे हाथ रखकर कहिए ये चारों में से बुद्धिमान कौन है? भोजन मांगने वाला, धन मांगने वाला, कपड़े मांगने वाला, कि पैसे मांगने वाला, कि जेल से बाहर निकलने के लिए इच्छा करने वाला? तो बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो जेल से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि इस जेल में रहकर चाहे धन मिल जाए, कपड़े मिल जाए, भोजन मिल जाए, हम कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार यह पृथ्वी भगवान के द्वारा बनाई गई एक जेल है, जब तक इस पृथ्वी रूपी जेल में रहेंगे कुछ भी मिल जाए हम लोग सुखी नहीं हो सकते हैं। इसलिए भगवान के पास कुछ मांगना है तो मांगना चाहिए प्रभु इस पृथ्वी रूपी जेल से बाहर निकाल कर आपके धाम में हमें बुलाएंगे, इसे बुद्धिमान कहा जाता है। नहीं तो भगवान के सामने कहने वाला मुझे ये चाहिए वह, ये बुद्धिमान नहीं है, ये नंबर वन मूर्ख है, मूर्ख है। गुरु महाराज कहते हैं कि जो सुख नरक में भी मिलता है ऐसा सुख मांगने के लिए लोग कामना करते हैं। तो मानो भगवान विष्णु ने पूछा ध्रुव ठीक है लोग जो भी माने, आपको क्या चाहिए? ध्रुव महाराज ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग दे देता हूं। ध्रुव महाराज ने कहा देखो स्वर्ग तो मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि स्वर्ग में यद्यपि तेतम भूत्वा स्वर्ग लोकम विशालम, स्वर्ग लोक बहुत विशाल है, वहां बहुत उत्कृष्ट मात्रा में सुख है, परंतु क्षणे पुण्य मृत्यु लोकम मिशन्ति, एक ना एक दिन वहां से यहाँ पृथ्वी पर गिरना पड़ता है, और जब ऊपर से व्यक्ति गिरता है तो बहुत चोट लगती है। गुरु महाराज कहते हैं एक तो आप ऊपर पहुंचाएंगे और वहां से गिराएंगे, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। भगवान के भक्त कभी स्वर्ग नहीं मांगते हैं। कल भगवान कपिल देव ने कहा कि सारूप्य सारूप्य सालोक्य साष्टी दीयमानम न गृणंती, भगवान अपने भक्तों को स्वर्ग नहीं मुक्ति भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर भी भगवान के भक्त मुक्ति भी नहीं मांगते। तब ध्रुव महाराज ने कहा तो तुम्हें क्या चाहिए? भगवान ने कहा ध्रुव क्या चाहिए? ध्रुव महाराज ने कहा यदि आपको देना ही है, सबसे पहले तो ध्रुव महाराज ने कहा स्वामी कृतार्थ हम वरम न यांचे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु भगवान ने जब बहुत बहुत मांगने के लिए कहा तब ध्रुव महाराज कहते हैं कि प्रभु मुझे आपके भक्तों का संग प्रदान कीजिए, आपको मुझे कुछ देना ही है तो मेरे पर कृपा कीजिए कि मैं आपके भक्तों का संग कर सकूं, आपके भक्तों के बीच में बैठ सकूं। भगवान ने कहा ध्रुव ठीक है मेरे भक्तों का संग मैं तुम्हें दे दूंगा, परंतु तुम जानते नहीं हो ये संसार में कितना दुख है, संसार सागर घोई संसार दावानल